नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। एक देश एक चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दी है। 18,626 पेज की यह रिपोर्ट 8 खंडों में है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली ये उच्च स्तरीय समिति एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश की है। लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं को लेकर बनी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। जानकारी के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक ठोस मॉडल की सिफारिश की है। ये रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को समिति के गठन के बाद से हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ चर्चा और 191 दिनों के रिसर्च वर्क का परिणाम है। समिति ने कहा कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, जिसके बाद 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इसमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक मतदाता सूची रखने की सिफारिश की गई है। साथ ही एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश भी की गई है। प्रस्तावित रिपोर्ट लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एकल मतदाता सूची पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सितंबर 2023 में गठित समिति को मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे भी शामिल हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता और अधीर रंजन चौधरी को भी समिति का सदस्य बनाया गया था, लेकिन उन्होंने समिति को पूरी तरह से छलावा करार देते हुए मना कर दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाला मामले में सेशन कोर्ट का रुख किया। राउज एवेन्यू कोर्ट के 16 मार्च को पेशी के लिए शामिल होने के निर्देश के खिलाफ उन्होंने ऊपरी अदालत का रुख किया है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर ईडी की शिकायत पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से उन्हें समन जारी किया गया था। इस मामले में 16 मार्च को सुनवाई होनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 2 शिकायतें दर्ज कराई थी। ईडी ने समन को नज़रअंदाज किए जाने की वजह से 3 फरवरी और 6 मार्च को मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर ईडी की ओर 8 समन जारी होने के बावजूद एक पर भी अमल नहीं किया है। केजरीवाल को 4 मार्च, 26 फरवरी, 19 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, पिछले साल 22 दिसंबर और 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बता दें कि एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की पहली शिकायत पर केजरीवाल को 17 फरवरी को बुलाया था। तब केजरीवाल वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट से अगली तारीख की मांग की। उन्होंने कहा था कि अगली सुनवाई में वो खुद पेश होंगे। कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च को पेश होने का समय दिया। पेशी से पहले ही केजरीवाल के ओर से ऊपरी अदालत का रुख किया गया है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच नेताओं का पारा भी इस वक्त बढ़ा हुआ है। नेता अपने लिए जगह तलाश रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस से निलंबित सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर आज दिल्ली में औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल होंगी। परनीत कौर पंजाब की शाही सीट पटियाला से 4 बार कांग्रेस की सांसद रही हैं। वहीं परनीत कौर को बीजेपी पटियाला से सीट दे सकती है, क्योंकि वो बीते 25 सालों से पटियाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इसके साथ ही ये 30 सालों में पहला मौका होगा जब भाजपा का कोई उम्मीदवार इस सीट से चुनाव लड़ेगा। पंजाब के 2 बार के मुख्यमंत्री व पूर्व कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने सांसद परनीत कौर को 3 फरवरी 2023 को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके बाद भी परनीत पति कैप्टन अमरिंदर के कार्यक्रमों में शामिल होती रहीं और तब से ही ये तस्वीर स्पष्ट हो गई थी कि लोकसभा चुनाव के करीब आकर परनीत कौर भाजपा का दामन थाम लेंगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले से ही ये बात कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में परनीत कौर ही पटियाला से उम्मीदवार हो सकती हैं। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन हो जाने के बाद भी पटियाला सीट भाजपा के खाते में जाएगी। परनीत कौर की उम्र 79 वर्ष है, लेकिन उनके लिए भाजपा 75 से अधिक उम्र के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नहीं उतारने की अपनी नीति में भी ढील दे सकती है। कांग्रेस छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस का गठन कर भाजपा के साथ गठबंधन किया था। 2022 के विधानसभा में इस सीट से पीएलसी के उम्मीदवार के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने पीएलसी का भाजपा में विलय कर दिया। ऐसे में बीजेपी अगर परनीत कौर को टिकट देती है तो ये तय है कि पटियाला सीट पर पहली बार भगवा झंडा फहर सकता है। पहले गठबंधन के दौरान इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल ही चुनाव लड़ता था। परनीत कौर कांग्रेस से 1999, 2004 व 2009 का लोकसभा चुनाव लगातार जीती थी। 2014 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार धर्मवीर गांधी से वो चुनाव हार गईं, लेकिन 2019 में उन्होंने पुनः जीत हासिल की थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।